आस्तिक घर से निकल चुका था और अरुणिमा ने उसे अलविदा भी कर दिया था, लेकिन अरुणिमा का दिल बेचैन हो गया था। हर बार वो हिम्मत करके आरती को बताने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत नाकामयाब साबित होती। उसने सोच लिया था कि इस बार जब आस्तिक वापस आएगा तो वो उसे सच बता ही देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुष्कर रायचंद आस्तिक को ये बात पहले बताए। आस्तिक ड्राइव कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजता है। आस्तिक ने देखा उसके फ़ोन पर पुष्कर जी की कॉल आ रही है। पुष्कर जी उसे बहुत कम कॉल किया करते थे, साल में सिर्फ दो बार ही ऐसा होता था जब पुष्कर जी ने उसे फ़ोन किया होता था। आज आस्तिक ने अपने फ़ोन पर अपने पिता का नंबर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा और ड्राइविंग करते हुए कहा, जी डैड। आस्तिक, मुझे तुमसे बात करनी है, सामने से पुष्कर जी ने कहा। लेकिन सामने से आस्तिक ने ड्राइविंग करते हुए कहा, अभी नहीं डैड, सबको मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूरी बात करनी ही होती है, लेकिन मेरे पास इस समय बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए आपकी जो भी बात है मैं बाद में सुनूंगा, फ़िलहाल के लिए मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना वो फ़ोन काटने ही वाला था कि पुष्कर जी ने उसे रोकते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे घर आया था। आस्तिक के हाथ रुक गए और वो ड्राइविंग धीमी कर देता है। एकदम हैरानी से वो अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखता है। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। पुष्कर जी कल घर आए थे, लेकिन कब, क्यों और किस लिए, वो ये सारे सवाल पूछने ही वाला था कि पुष्कर जी ने आस्तिक से कहा, आस्तिक, कल मैं तुम्हारे घर आया था और मेरी मुलाकात अरुणिमा से हुई थी। इस बात ने आस्तिक की आंखें और ज्यादा हैरानी से बड़ी कर दी। वो एकदम हैरान होते हुए कहता है, क्या आप कल घर आए थे और अरुणिमा से मिले थे, लेकिन क्यों और आप घर क्यों आए थे? पुष्कर जी ने कहा, मुझे पता चला कि तुम पर हमला हुआ था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम घर पर नहीं थे इसलिए मैं वहां से वापस चला गया। लेकिन वहां पर मुझे जो चीज़ पता चली वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। क्या अरुणिमा ने तुम्हें कुछ बताया? आस्तिक के हाथ ठंडे पड़ गए थे। वो पुष्कर रायचंद को अच्छी तरह से जानता था और वो जानता था कि वो वारिस के लिए अरुणिमा और उस पर प्रेशर जरूर बनाएंगे, इसीलिए उसने दांत पीसते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, डैड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाप बेटे के रिश्ते को वहीं तक सीमित रखेंगे जहाँ तक उसकी मर्यादा रहती है। इसके अलावा मैं मेरी बीवी के साथ कैसे पेश आता हूँ ये हमारे बीच की बातचीत है, आप इसमें दखलअंदाजी नहीं करें तो बेहतर होगा। और जहाँ तक बात रही आपसे मेरे घर आने की, तो प्लीज़ अगली बार आने से पहले मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी बीवी से कुछ ऐसा कहें जिससे वो परेशान हो जाए। आस्तिक को पुष्कर जी के हंसने की आवाज़ आती है और वो हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं अगली बार तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। और मुझे भी कोई शौक नहीं था वहां पर आकर अरुणिमा से कोई बात करने का, लेकिन जो बात मुझे पता चली है मैं चाहता हूं कि वो बात तुम्हें खुद अरुणिमा से पता चले, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके साथ बैठो और आराम से बात करो। पुष्कर जी ने इतना कहने के बाद फ़ोन रख दिया और आस्तिक की ड्राइविंग और ज़्यादा तेज़ हो गई। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसके दिमाग में पुष्कर जी की बात ही चल रही थी। अरुणिमा ने बताया क्यों नहीं कि पुष्कर जी घर आए हुए थे। वो यही सोचते हुए ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे याद आता है कि रात के वक्त जब वो दोनों एक साथ बेडरूम में थे, अरुणिमा उसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। क्या वो उसे यही बताना चाहती थी कि पुष्कर जी घर आए थे? और अगर ऐसा था भी, तो क्या पुष्कर जी ने कुछ ऐसा कहा जो अरुणिमा को परेशान कर रहा था? वैसे भी आस्तिक जानता था कि उसके पिता वारिस के लिए अरुणिमा और उस पर प्रेशर बनाएंगे, आज नहीं तो कल उन दोनों के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया जाएगा। और यही चीज़ है जो आस्तिक अरुणिमा से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अरुणिमा को किसी भी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस हो। आस्तिक ने घड़ी में टाइम देखा, इस वक्त रात काफ़ी हो गई थी, शायद अरुणिमा सो गई हो, इसीलिए उसने अभी अरुणिमा को फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपनी बीवी की नींद नहीं ख़राब करना चाहता था, इसीलिए उसने ड्राइविंग करना जारी रखा। ड्राइविंग करते हुए वो मुंबई के बाहर के इलाके में आ जाता है जहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे मकान और दूर दूर तक खेत हुआ करते हैं। आस्तिक की गाड़ी एक छोटे लेकिन खूबसूरत से बंगले के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, घर के आंगन में बैठे दो बुजुर्ग एकदम से हैरान हो जाते हैं और खड़े होते हुए आस्तिक को देखने लगते हैं। आस्तिक मुस्कुराते हुए अंदर आता है और उनसे मिलते हुए कहता है, हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद वो आदमी कहता है, आस्तिक बेटा, आपने हमें फ़ोन किया कि आप हमारे घर आ रहे हो, मैं तो परेशान हो गया कि आप इतनी रात को घर क्यों आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, आपके यहाँ मेहमानों को बैठने का नहीं बोला जाता क्या? तभी वो महिला जल्दी से कहती है, तुम्हारे अचानक आने से हम लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, बस इसलिए ये सब भूल गए। अब तुम खड़े क्यों हो? ना काफी समय बाद आए हो और काफी बदल भी गए हो। स्कूल के दिनों में तो काफी यंग नजर आते थे, लेकिन अब देखो, अब पूरे आदमी हो गए हो और इतने बड़े बिजनेसमैन भी हो गए हो। तुम्हारी तो हर दिन न्यूज आती रहती है, हम टीवी पर तुम्हें देखते हैं। आस्तिक सामने बैठता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना बड़ा बिजनेस है, न्यूज़ तो आएगी ही। वैसे काफ़ी अच्छा घर है आप लोगों का, छोटा है लेकिन ज़रूरत का सारा सामान है। मैं भी काफ़ी समय बाद यहाँ आया हूँ, स्कूल के दिनों में हम फ्रेंड्स यहीं पर आकर पार्टी किया करते थे। लावण्या की वो बर्थडे पार्टी, हम सारे दोस्तों ने मिलकर उसका बर्थडे ड्रेस ही खराब कर दिया था। और ये कहकर आस्तिक हंसने लगता है। सामने बैठे कोई और नहीं बल्कि लावण्या के माता पिता हैं। वे भी आस्तिक की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद आस्तिक इधर उधर देखते हुए कहता है, लावण्या कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। उसके पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उसके पिता कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो आस्तिक, लावण्या कहाँ है ये तो तुम्हें पता होगा ना, वो तो बैंगलोर तुम्हारे पास गई थी, उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई है, तो हमें लगा वो अभी भी तुम्हारे साथ होगी। आस्तिक ने गहरी सांस छोड़ी और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो बैंगलोर मेरे पास ही थी और कुछ दिनों तक मेरे पास ही रही थी, लेकिन उसके बाद वो वहां से चली गई और फिर मैंने उसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, जबकि अब जब मैं उसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही, इनफैक्ट उसने अपना नंबर तक बदल दिया है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी थी, तो क्या आप लोग उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लावण्या के पिता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हम उसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी पिछले हफ्ते ही हमने उससे बात की है और हमारे पास उसका नया नंबर भी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसने अपना नंबर तुम्हें नहीं दिया है, वैसे कोई बात है क्या। आस्तिक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई और उसने कहा, जो भी बात है मेरे और लावण्या के बीच की है।
पर तभी लावण्या के माता पिता को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उनके घर के आसपास कुछ गाड़ियों की आवाज़ और कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ें। वे दोनों हैरान हो जाते हैं और एक साथ आस्तिक को देखने लगते हैं। आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे से बदल जाते हैं और वो डेविल स्माइल के साथ कहता है, इन सब से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी आपने कहा ना मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी साथ रखनी पड़ती है, ये बस मेरी सिक्योरिटी है। वैसे आप लावण्या को फ़ोन करने वाले थे। अब लावण्या के पिता के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ जाती है। वे आस्तिक के बारे में पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानते थे और आस्तिक कितना खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा उन्हें हो रहा था, लेकिन अब आस्तिक उनके घर में है और उनके सामने बैठा हुआ है और शायद उनके घर को आस्तिक के आदमियों ने घेर लिया है। इसके अलावा उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। लावण्या की माँ ने उसके पिता का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए देखने लगी। तो लावण्या के पिता धीरे से अपना फ़ोन निकालते हैं और लावण्या का नंबर डायल करते हैं। जैसे ही उन्होंने लावण्या के नंबर पर कॉल किया, आस्तिक ने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया और स्पीकर पर फ़ोन रखते हुए टेबल पर रख दिया। वे दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम घबरा जाते हैं। कुछ ही रिंग बची थी कि लावण्या की नींद से भरी आवाज़ आती है, हाँ पापा आपने मुझे इतनी रात को फ़ोन किया है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पर इससे पहले कि लावण्या के पिता कुछ कह पाएं, आस्तिक ने फ़ोन उठाया और वो स्टाइल से खड़ा होता है। उसने अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और फ़ोन को अपने मुँह के पास लाते हुए उसने अपनी डरावनी और भारी आवाज़ में कहा, मुझे पता है कि तुम मुंबई में ही हो, लेकिन जहाँ भी हो एक घंटा है तुम्हारे पास, चुपचाप अपने घर वापस आ जाओ वरना तुम्हारे माता पिता को शमशान पहुँचा दूंगा। लावण्या ने जब आस्तिक की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, आस्तिक खबरदार अगर तुमने मेरे पेरेंट्स को कुछ किया तो। आस्तिक डेविल स्माइल के साथ घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अभी 11 बज रहे हैं, 12 से पहले अगर तुम यहाँ नहीं पहुँची तो तुम्हारे माता पिता अगला दिन नहीं देख पाएंगे। और ये कहते हुए आस्तिक ने फ़ोन रख दिया और उसने एक तीखी निगाहों से लावण्या के माता पिता को देखा, जिनके चेहरे पर अब डर की लकीर आ चुकी थी। हालांकि ये आस्तिक रायचंद का स्टाइल नहीं था। अगर आस्तिक को अपनी तरीके से किसी को सज़ा देनी होती तो वो खुद उनके घर कभी नहीं आता, बल्कि उन्हें उनके घर से उठाकर सीधे अपने अड्डे पर लेकर जाता और उसके बाद उसकी ऐसी हालत करता कि सामने वाला शख्स खुद बखुद सारा सच उसके सामने थाली में परोस कर रख देता। लेकिन जब से अरुणिमा के लिए उसने प्यार को महसूस किया था तब से आस्तिक बदल चुका था और यहाँ तक कि उसका बदला लेने का स्टाइल भी थोड़ा सा बदल चुका था। अब मारना चीरना फाड़ना जैसे कामों को कम करने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इसीलिए उसे थोड़ा बहुत बीस्ट की तरह तो रहना ही है, क्योंकि आस्तिक को पता था कि अगर कोई ताकतवर इंसान झुकने पर आता है तो दुनिया उसकी पीठ का पायदान बना देती है।